नमस्कार, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं गौरी दिवाकर से। गौरी एक कथक डांसर हैं। यूँ तो इंडियन क्लासिकल आर्ट हमेशा से इंटरेस्ट का विषय होता है, लेकिन ये मुलाकात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गौरी कुछ दिन में यहाँ पर आने वाले हैं, यहाँ यानी ऑस्ट्रेलिया, और वो अपनी कुछ शोज़ भी यहाँ पर करने वाली हैं। सबसे पहले गौरी, स्वागत है आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद।
कब आ रही हैं आप यहाँ पर, और क्या आपका ये पहला टूर होने वाला है?
मैं 5th को वैसे पहुंच रही हूँ सिडनी, और मैं पहले आ चुकी हूँ ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मैं पर्थ इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में आई थी अपने गुरुजी श्रीमती अदिति मंगलदास जी के साथ में। 2 बार आई हूँ मैं, और ये पहला मेरा सोलो परफॉर्मेंस है जो कि सिडनी डांस फेस्टिवल में है, मधुरा मास के द्वारा, जो कल्पना श्रीराम जी को चलाती हैं।
तो गौरी, आपने अपने गुरुजी का जिक्र किया अभी बातों बातों में, तो एक
जी
सवाल है, थोड़ा बेसिक है, लेकिन शायद सभी जानना चाहेंगे कि आप कथक में इतने
जी
आगे बढ़ चुकी हैं, शुरुआत कहाँ से
जी
हुई?
मेरी शुरुआती दौर जो रही है जमशेदपुर से रही है, मैं दिल्ली से नहीं हूँ,
जी
और जमशेदपुर में मैं अपनी उम्र के 5वें साल से मैं कथक सीखना शुरू की हूँ, और उसके बाद करीब 10 साल वहाँ सीखने के बाद और अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद मैं एकेडमिक और मैं दिल्ली आई हूँ, और दिल्ली में फिर मैं कथक केंद्र नई दिल्ली में अपनी नृत्य की शिक्षा प्रारंभ की थी, और पंडित बिरजू महाराज जी और उनके बड़े बेटे श्री जयकिशन महाराज जी के साथ, और करीब वहाँ पे 6 साल एक पोस्ट डिप्लोमा का कोर्स होता है वो मैंने कंप्लीट किया था वहाँ पे, और करीब 1998 से लेके अभी तक मैं अपनी चौथी गुरुजी जो मेरी हैं अदिति मंगलदास जी,
जी
उनके सानिध्य में मैं काम भी कर रही हूँ और वो मेरी गुरुजी भी हैं, और मेरी जो पहली गुरु जमशेदपुर में है वो है श्रीमती सुमिता चौधरी जी।
तो क्या मतलब, जैसे स्टार्ट हुई, आपने बताया कि स्टार्ट तो ऐसे ही हो गई थी क्योंकि वहाँ पर कुछ था नहीं और आपने स्टार्ट किया कथक
ऑप्शन नहीं
सीखने।
था कि कोई और क्लासिकल डांस फॉर्म, वहां पे सिर्फ कथक सिखाया जाता था, तो शायद मेरी किस्मत में लिखा ही था कि कथक नृत्यांगना बनना है, तो भगवान ने शुरू से ही वो उसकी पोजीशनिंग सही कर रखी थी।
जी गौरी, एक उत्सुकता है मेरे मन में जानने की। आपने हमको बताया कि जब आप डांस सीखने पहुंची थी तो कथक ही वहां पर एक ऑप्शन था, पहले एक ऑप्शन और फिर ये दीवानगी। कितना समय लगा, कितना अंतर था एक ऑप्शन के दीवानगी तक पहुंचने में?
ये सब चीजें तब होती हैं जब आप बड़े होते हैं, आप एक एडल्ट के रूप में आप उस चीज को रियलाइज करते हैं, तो वही चीजें मेरे साथ भी हुई। जब मैं गई थी डांस सीखने के लिए तो मुझे था बस डांस सीखना है, बट
जी
ये श्योर थी कि क्लासिकल सीखना है, और वहां जब गई और कथक क्लास देखी चलते हुए वहां पे अपने इंस्टीट्यूट संगीत समाज में, तो फिर एकदम रम गई थी, और करीब 10 साल वहां पे मैं सीख भी रही थी, और हमारी कला में, दृश्य कला में, एक चीज सबसे अच्छी बात है कि आप सीखते भी जाते हैं और परफॉर्मेंस भी करते जाते हैं, वो छोटे छोटे परफॉर्मेंसेज होते हैं हमेशा, और स्कूल में फिर अपनी मुझे काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, तो वो दोनों चीज का जो सामंजस्य था मेरे जीवन में बहुत ही अच्छा रहा। और जब 12वीं कक्षा की पढ़ाई कंप्लीट की और उसके बाद दिल्ली आना हुआ, तो
जी
वैसे मैं पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आई थी कि दिल्ली जाके आगे की पढ़ाई करनी है 12th के बाद, लेकिन जब मुझे, मैं पीछे पलटी और मुझे लगा कि 10 साल लगाने के बाद और मुझे लगता है कि ये मेरा पैशन ही है, और फिर मैं डिसाइड की कि नहीं, मुझे आगे इसी में काम करना है, इसी क्षेत्र में जाना है।
चलिए, और आपका वो डेडिकेशन जो है वो अब दिखता भी है कि आप इस मुकाम तक पहुंच गई हैं। आप सिर्फ भारत में ही नहीं, जगह जगह शोज कर रही हैं। गौरी,
बहुत बहुत शुक्रिया
एक चीज़ जो मेरे दिल में है, कथक मैं भी
जी
जानता हूँ, कथक शायद
जी
जैसा मैं जानता हूँ वैसे शायद बहुत सारे जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, वो
जी
जानते होंगे, लेकिन
जी
कथक की जो मुद्राएं हैं, आनंदित हम भी होते हैं,
जी
लेकिन उन मुद्राओं को
जी
समझने की काबिलियत शायद हमारे पास नहीं है। आप समझाना चाहेंगी क्या मुझे और मेरे श्रोताओं को कि किस तरह
जी
की मुद्राएं होती हैं और क्या भाव होते हैं एक आम भाषा में?
सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि कथक का मतलब पहले क्या है। कथक का मतलब ही है कथावाचन, और ये उत्तर भारत का होने की वजह से ऐसा है कि जो हम कथा बोलते हैं ये सिर्फ रामायण और महाभारत से ही सीमित नहीं है। ये जरूर है कि कथक 3 काल में बटा हुआ है, मंदिर काल, मुगल काल और रंगमंच काल में,
जी
लेकिन ये जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, अब वो बढ़ के जब मुगल में आया तो वो काफी बदलाव आया, और उसके साथ रंगमंच काल जो कि प्रोसीनियम स्टेज जिसको कहते हैं उसमें आया, तो काफी बदलाव धीरे धीरे आता गया। तो कथा वाचन की प्रक्रिया जो होती है, आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं किसी भी बात को लेके, वही अपने आप में कथक की बहुत बड़ी खासियत है। और हम अपने हिंदी साहित्य की तरफ भी काफी काम करते हैं, तो इन सब चीजों को मिला के जब हम जब काम करते हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, तो वो एक तरह से मेरे लिए एज एन इंडिविजुअल मैं कहती कि वो मेरे लिए कथा वाचन है।
बिल्कुल, और बहुत प्रभावशाली तरीका भी है ये किसी कहानी को किसी दूसरे तक पहुंचाने का। और
बिल्कुल
मैं समझता हूँ कि मेरे इस सवाल ने और आपके इस जवाब ने बहुत तक हद तक जो कथक को समझने की लोगों की चाह होगी उसको पूरा किया है। गौरी, किस तरह की जो रिस्पांस है उसकी उम्मीद कर रही हैं आप ऑस्ट्रेलिया में?
मैं बहुत ही अच्छा रिस्पांस उम्मीद कर रही हूँ। जैसे कि ऑर्गेनाइजर ने भी बताया हमें कि अगर टिकट सेल के बारे में बताए तो वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, और उसके अलावा मेरे दो परफॉर्मेंसेज और हैं, इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी है और एक काउंसिल है वहां पे भी, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।
आखिरी में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया आप आ रही हैं भारतीय संस्कृति के रंग बिखेरने के लिए, और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो कि मल्टी कल्चरल कंट्री के रूप में पहचानी जाती है, तो यहाँ क्या कुछ खास देखना चाहेंगी आप?
सबसे पहले तो मैं सिडनी ओपेरा हाउस देखना चाहूंगी,
जी,
और उसके अलावा दो तीन चीजें और दिमाग में है, और ऑफकोर्स इतना खूबसूरत बीच एरिया है वो भी देखना पसंद करूंगी, और जो भी वहाँ के म्यूजियम्स वगैरह हैं आई वुड लव टू गो एंड वॉच।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरी, उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो दौरा है वो सफल साबित हो, लोग आपकी कला का आनंद लें और आप भी यहाँ की जो छटा है, यहाँ की जो मल्टीकल्चरिज्म है उसका आनंद लें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।